नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सेशल्स में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते व्यापार तनाव के बीच कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। और हंसिका लांबा सारिका मलिक ने सर्बिया में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेता संयुक्त रूप से आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की पहलों पर चर्चा करेंगे। आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल क्वालालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सेशल्स यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री राधाकृष्णन सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों की पुष्टि करेंगे। भारत के विजन महासागर के अंतर्गत सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। शंघाई में आयोजित 7वें बर्न शिखर सम्मेलन में कल भारत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में देश के विकास और सुधार के साथ साथ तकनीकी प्रगति को दर्शाया गया। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा क्षेत्र के जाने माने व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय मिशन के अनुसार सम्मेलन के दौरान भारत के हरित परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखते हुए जलवायु समता, पोषण पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान आपूर्ति श्रृंखला, पुनर्सेकरण, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिवर्तनकारी प्रभाव पर भी चर्चा हुई। मलेशिया के क्वालालंपुर में आज से 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस दौरान तिमोर लेस्ते के आसियान में प्रवेश संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो 11वें आसियान सदस्य देश के रूप में इसके औपचारिक प्रवेश का प्रतीक होगा। इन शिखर सम्मेलनों में आयोजित शिखर सम्मेलन आसियान और 7 संवाद भागीदारों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आसियान प्लस 1 शिखर सम्मेलन शामिल है। पूर्ण सत्र के दौरान आसियान नेता आसियान समुदाय निर्माण और आसियान के बाहरी संबंधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा केंद्रित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन सहित कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शी जिनफिंग और श्री ट्रंप विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे व्यापार संघर्ष को समाप्त करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। श्री ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि चीन अगले महीने की 1 तारीख से लागू होने वाले अतिरिक्त 100% टैरिफ से बचने के लिए समझौते पर सहमत हो जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओटावा के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच कल रात से कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। श्री ट्रंप ने स्पष्ट किया कि नया टैरिफ कनाडा से आयातित सामानों पर पहले से लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा। ये निर्णय ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता समाप्त होने के कुछ ही दिन बाद आया है, जब उन्होंने उत्तरी पड़ोसी देशों पर टैरिफ के खिलाफ एक विज्ञापन अभियान में पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शब्दों को गलत तरीके से उद्धृत करने का आरोप लगाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस साल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के निर्यात पर 25% और कनाडा से ऊर्जा उत्पादों के निर्यात पर 10% टैरिफ लगाया था। यूरोपीय नेताओं और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के प्रमुख ने लंदन में आयोजित गठबंधन कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में रूस पर प्रतिबंध कड़े करने और यूक्रेन को लंबी दूरी की मारक तथा वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाने का संकल्प लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य वैश्विक बाजारों से रूसी तेल और गैस को बारी बारी से हटाना और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद के लिए रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधों के अपने 19वें दौर को मंजूरी दे दी है, जो पहली बार रूस के प्राकृतिक गैस क्षेत्र को लक्षित करता है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए अमरीकी प्रतिबंधों को दुर्भावनापूर्ण और बेअसर बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में शुरू हुआ। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कथित तौर पर धमकी दी है कि अगर वार्ता विफल होती है तो खुला युद्ध भी हो सकता है। कतर और तुर्की की संयुक्त मध्यस्थता में पाकिस्तान अफगानिस्तान वार्ता का पहला दौर 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुआ था। दूसरे दौर की वार्ता में अफगान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप गृह मंत्री रहमतुल्ला मुजीब कर रहे हैं। इसमें अफगान के गृह मंत्री नूर अहमद नूर के भाई अनस हक्कानी भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व सुरक्षा अधिकारियों का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कर रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा पर हुई खूनी झड़पों के कारण तनाव बढ़ गया है। धुर वामपंथी विचारधारा वाली अनुभवी सांसद कैथरीन कोनोली आयरलैंड की नई राष्ट्रपति होंगी। शुरुआती नतीजों के बाद सत्तारूढ़ दलों ने हार मान ली है। उनकी प्रतिद्वंद्वी हीथर हम्फ्रीज ने उन्हें आयरलैंड की अगली राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है, हालांकि वोटों की गिनती अब भी जारी है। कैथरीन कोनोली माइकल डी हिंगिस का स्थान लेंगी। हिंगिस ने अधिकतम 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। कैथरीन कोनोली पहले वकील रह चुकी हैं। वो पहली बार 2016 में संसद के लिए चुनी गई थीं। कोनोली अमेरिका तथा यूरोपीय संघ दोनों की मुखर आलोचक रही हैं। बीएपीए स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क में आयोजित फोरम ऑन फेथ 2025 में बेहतर समुदाय निर्माण के लिए विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान सद्भाव को बढ़ावा देने, परिवारों को मजबूत बनाने और आस्था प्रेरित सेवा के माध्यम से समाज को बदलने में उनके अटूट वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है। संस्था ने कहा है कि यह सम्मान मानव कल्याण और एकता में बीएपीएस के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश बल।
जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुश्ती से। भारत की हंसिका लांबा और सारिका मलिक ने सर्बिया में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में भारत ने महिला वर्ग में 7 पदक जीते। हंसिका और सारिका के अलावा निशु, नेहा शर्मा, पुलकित, सृष्टि और प्रिया मलिक ने कांस्य पदक अपने नाम किए। 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुजीत कलकल स्वर्ण पदक के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं। और ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। नवी मुंबई में ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा रांची में आयोजित 4थी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 12 एथलेटिक्स और विभिन्न ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 6 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अगर
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सेशल्स में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते व्यापार तनाव के बीच कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। और हंसिका लांबा और सारिका मलिक ने सर्बिया में 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किए हैं। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।